તારીખ 1/9/1993 શ્રી સમયસર ગાથા 181-183 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 371 મૂળ કેસેટમાં અવાજ ધીમો છે તથા હમિંગ છે.
શરૂઆત લેતે રામ ઓર જ્ઞાન કી જનતા आगे जा करके दूसरे पैराग्राफ में फिर क्या कहती हूँ कि ऐसे स्वभाव विभाव के बीच में व्यापार धारा द्वारा स्वभाव को भेदा जान ले। व्यापार धारा में ज्ञान का उपयोग यहाँ पर या उसे द्वारा क्या बात है उसको अलग कर ले स्वभाव और विभाव। आगे कहेंगे कि आत्मा के विभाव से जुड़ा है। तो पहले ज्ञान और वस्तु भाव लिया उसी पर से स्वभाव विभाव लिया उसी पर से आत्मा और विभाव लिया। अब कहेंगे वो कैसे होता है अवस्था पर से पदार्थ का परिचय होता है। बिना अवस्था किसी भी पदार्थ का पदार्थ के स्वभाव का या पूरा पदार्थ का परिचय नहीं होता और बिना परिचय पहचान नहीं होती। श्रुति कहीं एक भी ऐसा दृष्टांत अपवाद रूप से भी नहीं मिलेगा कि बिना परिचय किसी की पहचान हो सकते हो। परिचय वर्तमान व्यक्त अवस्था के बिना और व्यक्त अवस्था के अनुभव को बार बार अनुभव में लिए बिना परिचय नहीं होता और बिना परिचय पहचान नहीं होती। तो ये पहचान होने के लिए यही एकमात्र प्रोसेस है यही एकमात्र प्रक्रिया है कोई दूसरे प्रकार की प्रक्रिया नहीं ले सकती। कोई बात द्रव दृष्टि प्रकार से 466 नंबर के रचनामृत में है किधर नहीं हो रहा आपका द्रव दृष्टि प्रकार से थोड़ा रखना शुरू किधर रखेंगे जो उसमें परिचित शास्त्र हैं तो वहाँ क्योंकि सूर्य में ये कहते हैं कि पर्याय के अलावा ध्रुव को समझने का कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। एक ही पंक्ति में उन्होंने ये बात कह दी है और वही बात समझाने के लिए आगे पीछे इनके वचनामृत है 125 नंबर का और दूसरा है 506 नंबर का। तो दोनों जगह 125 में और 506 में तो द्रव दृष्टि की इतनी जोरदार बात करने वाले सत्पुरुष भी कैसे पर्याय को बीच में ले आते हैं। क्या इसका ये मतलब होता है कि ये भीतर में द्रव स्वभाव के तक अंदर में पहुंचने का अगर कोई चैनल है कोई रास्ता है जिन्होंने भी चैनल दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए यहाँ ज्ञान से खास करके ज्ञान स्वभाव को ग्रहण किया जाता है। कुछ गुरुदेव कहते थे कि ज्ञान के उपयोग में ज्ञान के पर्याय में स्वभाव अंश व्यक्त है। क्या कहते थे स्वभाव अंश व्यक्त होने से यही ज्ञान लक्षण से या उस ज्ञान लक्षण के परिचय से पूरा ज्ञान स्वभाव की पहचान होती है। तो एक सुषमा इतिहासा में कही कि ज्ञान स्वभाव का निश्चय करना तो हो पहचान करना तो हो अस्तित्व ग्रहण करना तो हो या स्वरूप निश्चय करना तो हो प्रतिभास करना तो हो एक ही बात है। तो दूसरा कोई उसका रास्ता है ही नहीं। ज्ञान से ही ज्ञान स्वभाव ग्रहण किया जाता है। इसलिए ज्ञान लक्षण से ज्ञान स्वभाव की पहचान करने की चर्चा अमृतचंद्र आचार्य महाराज ने परिशिष्ट माटी सारे 415 गाथा के पिता में ये विषय खुला है। तो वो एक विकल्प और खड़ा हो गया एक महत्वपूर्ण बात है पहचान करने की, वो तो आई ही नहीं टिका है। उन्होंने परिशिष्ट में इस बात को प्रश्नोत्तर छेड़ करके बिल्कुल स्पष्ट किया। यहाँ तो वो ये दृष्टांत है, वास्तव में एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, उसका आगे जाकर के ज्ञान और राग में उनको इस बात को दृष्टांत है सिद्धांत में ले आना है। तो वो समझ में आ रही इसलिए लिया है कि जैसे एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ का स्वचतुष्टय भिन्न भिन्न होता है, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, प्रत्येक परमाणु का, प्रत्येक जीव का, चाहे सजीव सजातीय पदार्थ हो चाहे विजातीय पदार्थ, अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से अपना अस्तित्व सर्वथा भिन्न रहता है। भिन्न रहता है उतना ही नहीं, सर्वथा भिन्न रहता है, इसलिए कोई संबंध नहीं रखती वस्तु, क्योंकि दोनों के प्रदेश भिन्न है, दोनों के प्रदेश भिन्न है। प्रदेश माया और अस्तित्व गुण की पर्याय है, तो दोनों का क्षेत्र भिन्न है। जब एक क्षेत्र में दूसरा क्षेत्र का प्रवेश ही नहीं है, तो फिर एक वस्तु के दूसरे वस्तु का कोई कार्य कारण संबंध नहीं रह सकता। जैसे कोई लौकिक न्याय में भी चोरी होती है, तो जिस पर आरोप आता है वो उस वक्त कहाँ थे? अभी तो बहुत बड़ा क्षेत्र चला अपने पीएम का, प्राइम मिनिस्टर का, कि जब उन्होंने पैसे दिए तो उस वक्त वो कहाँ थे, उसका अस्तित्व कहाँ था? क्या कहते हैं कानून की भाषा में उसको कहते हैं, खास उसका शब्द है, तो वो कहाँ रहते हैं इस वक्त, उनके रहने उसका मौजूदगी कहाँ थी? अगर उसकी मौजूदगी है तो आरोप सिद्ध होता है, अगर मौजूदगी नहीं है आरोप सिद्ध होने का कोई सवाल नहीं रहता, आगे की कोई बात नहीं रहती। एक वस्तु की मौजूदगी में दूसरी वस्तु की मौजूदगी नहीं है। अब सवाल ये खड़ा हो सकता है कि हमारी आत्मा और हमारा शरीर, शरीर जो है ये पूरा का पूरा, कोई उसमें खाली जगह नहीं है, वैक्यूम नहीं है, शरीर में कोई जगह वैक्यूम नहीं है, जहां भी खालीपन दिखता है वहां भी हवा तो है, पूरे पुद्गल भरे हुए हैं, कहीं भी वैक्यूम जिसको कहे ऐसी खाली जगह से नहीं है। और आत्मा के प्रवेश जो है वही बराबर शरीर के आकृति है, उसी के बराबर है, जिसकी जितना भी आकृति हो, क्षेत्रफल हो, उसके फिर भी जीव के क्षेत्र में परमाणु, शरीर का एक परमाणु भी नहीं, और शरीर के किसी भी एक परमाणु में जीव का कोई प्रवेश नहीं, उसको परस्पर अवगाहन ऐसा नाम दिया है। ये अवगाहन शब्द जो है वो सिर्फ जैन परिभाषा में और जैन शास्त्र में मिलता है, और अपनी जगह नहीं मिलता, इसलिए कि ये अवगाहन वाली जो वैज्ञानिक बात है वो कहीं जगह आई ही नहीं, इसमें विज्ञान तक कोई पहुंचे ही नहीं, पदार्थ विज्ञान तक ही, पर कृपालु देव ने उसकी परिभाषा बहुत सुंदर बनाई आसानी से समझ सके, कि एक पदार्थ और दूसरा पदार्थ का आकाश की अपेक्षा एक क्षेत्र होने के बावजूद भी क्या दोनों का अपना अपना क्षेत्र उपादान का एक ही है, अलग अलग है, उपादान में जीव के क्षेत्र में परमाणु है, परमाणु के क्षेत्र में लेकिन दोनों में दोनों को अवधान देने वाला तो आकाश है मुख्य रूप से, वो निमित्त रूप है, दोनों को एक ही निमित्त है, आकाश के एक ही प्रदेश में दोनों रहे, शरीर भी जीव भी, लेकिन उपादान का क्षेत्र अलग अलग है। तो क्या परिभाषा बने एक क्षेत्र पे, मैंने आकाश की अपेक्षा से एक क्षेत्र पे रहने पर भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जो अपना स्वरूप को त्याग किए बिना अपने स्वरूप में ही रहने वाले पदार्थ हैं, उसी को एक दूसरे का अवधान कहने में आता है। तो जीव ने अपना स्वरूप छोड़ा नहीं और शरीर ने अपना स्वरूप नहीं छोड़ा, भले ही आकाश के हिसाब से एक ही क्षेत्र में रहने वाला है। तो भी अब जब दोनों एक क्षेत्र में रहता है तो भी एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, और जब एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है तो दोनों के प्रवेश भिन्न है। दोनों के प्रवेश भिन्न होने से एक की मौजूदगी में दूसरे की मौजूदगी नहीं है, जब मौजूदगी नहीं है तो क्या करेगा। इसलिए आत्मा का कार्य शरीर नहीं करता, शरीर का कार्य आत्मा नहीं करता। क्यों? एक की मौजूदगी में दूसरे की मौजूदगी का अभाव है, बिल्कुल सदंतर अभाव है आकाश का एक क्षेत्र होने पर भी। इसलिए उनमें एक सत्ता की अनुपपत्ति है, अनुपपत्ति मैंने प्राप्ति नहीं होना, उपपत्ति मैंने प्राप्ति पर अनुपपत्ति मैंने प्राप्ति का अभाव। इसलिए एक के अस्तित्व में एक की मौजूदगी में दूसरे की मौजूदगी का राग है, अर्थात दोनों की सत्ताएं भिन्न भिन्न है। और इस प्रकार जबकि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है तब उनमें परस्पर आधार आदेश संबंध भी नहीं है। ले गया आचार्य महाराज इस पाठ के दृष्टांत में से क्या बात लेना है और न्याय में कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु कुछ नहीं है क्योंकि दोनों का अस्तित्व बिल्कुल भिन्न है, मौजूदगी भिन्न भिन्न है। जब मौजूदगी भिन्न भिन्न है तो यहाँ एक बात को और सिद्ध की कि एक के आधार से दूसरी वस्तु नहीं है, शरीर के आधार से हमारी आत्मा नहीं और हमारी आत्मा से शरीर का कोई आधार नहीं है। डॉक्टर लोग ना बोले आपकी आत्मा जो है तो शरीर के आधार से है, लेकिन अपने मुमुक्ष डॉक्टर ये बात नहीं कहते, नहीं कहेंगे। बहुत से डॉक्टर हैं हमारे मुमुक्ष भी समाचार पढ़ने वाले बड़े बड़े बहुत से डॉक्टर लोग कहेंगे समाचार लोग कहते हैं, आचार्य महाराज कहते हैं, वो शरीर कहते हैं, हमारा ज्ञान है तो उसमें पर्याप्त नहीं है या सही नहीं है। तो शरीर के आधार से अगर आत्मा जिंदा रहती है तो आत्मा का अभाव हो जाएगा, लेकिन अनादि अनंत शाश्वत पदार्थ आत्मा है। आत्मा का अस्तित्व कितना है? अनादि अनंत आयु धरने वाला ये पदार्थ है। ऐसा तो परमाणु भी ऐसा ही है पर ये वर्ण साइंस में विकृत है कि एक भी पदार्थ का पूरा नाश नहीं होता, उसकी अवस्थाएं पलटती है, नया पैदा नहीं होता और किसी का अभाव भी नहीं होता, ये तो उनको मानना पड़ता है। इसलिए किसी का आपस में आधार आदेश संबंध नहीं है, आधार आदेश संबंध नहीं होने से हमारे आधार लेने से जो पराध पराधीनता होती है हमारे परिणाम में, पर ये पराधीनता एक दीनता के परिणाम होने हैं। दुख की उत्पत्ति यहां से चालू हो जाती है। किसी भी जीव को दुख होने का ये मूल कारण है, और ये मूल कारण बिल्कुल साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। जैसे दृष्टांत दिया था कि पाश्चात्य देशों के लोग मल्टी मिलियनर्स होने के बावजूद भी दुखी क्यों? क्योंकि इनकी दीनता बढ़ गई। मुझे वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, उतना चाहिए, उतना चाहिए, उतना चाहिए कि उसकी जो जरूरत है जितनी जरूरत बढ़ी उतनी दीनता बढ़ी। गुरुदेव क्या कहते थे जरूरत वाले को? क्या कहते थे? भिखारी कहते थे। और लोग कैसे को, कैसे आदमी को कहते थे? हीर हाइनेस भावनगर स्वामनगर के महाराजा उस गुरुदेव थे। वो स्वामगर गुरुदेव के प्रवचन सुनने को आए, सारे सौराष्ट्र में बड़ा रखा, बड़ा कुछ उत्सव था, उनकी आमदनी और एरिया बड़ा। बोले कि आपकी जरूरत ज्यादा है, हम लोगों की कम है। जिसकी जरूरत कम है वो छोटा भिखारी है, जिसकी जरूरत ज्यादा है वो बड़ा भिखारी है। महाराजा को भी भिखारी कहने वाले भी कोई होते हैं जो महाराजा के भी महाराजा होते हैं। क्या उनको कोई चंदा मुंडा को दिखाना नहीं, कोई अपेक्षा वृत्ति तो है नहीं। निर्भीकता से सत्य के स्थापन निर्भीकता से ही हो सकता है। जिसको दीनता हो, जिसको कोई अपेक्षा हो, किसी भी प्रकार के अपेक्षा प्राय दूर प्रकार के मुख्य तैयारी एक आर्थिक और एक मान सम्मान की, दो में से एक अपेक्षा भी रही तो सत्य का प्रतिपादन निर्भीकता से कभी नहीं। क्यों? कि जिससे वो अपेक्षा रखते हैं उसको बुरा पड़े लग जाएगा। ये भान में वो बोलता है, जो कुछ प्रतिपादन करता है उस भान में रहता है, तो उनको सत्य का प्रतिपादन से होना मुश्किल है। जो ज्ञानी होते हैं उनको तो कोई अपेक्षा होती ही नहीं, और अपेक्षा होती है वो ज्ञानी कभी होते नहीं। ये ज्ञानी की परिभाषा। इसलिए कृपाल जी ने तो बहुत सुंदर व्याख्या की है, अंतरंग निष्प्रहता ज्ञानी का लक्षण है, जो अंतरंग से निष्प्रभ होते हैं। बाद में सारे ज्ञानी प्रवृत्ति करके वो अपने उदय के अनुसार फिर भी अंतरंग से वो उतने निरपेक्ष होते हैं कि मेरा स्वरूप बिना किसी के अभी ही पूर्ण है। आता है कि प्रकाश के पत्र में वो बात आई है, सरसा मैंने ये खुद के शब्द में लिखी हुई बात है, बिना किसी के अभी ही मैं पूर्ण हूं। यानी मेरा स्वरूप निरालंब निरपेक्ष है, न किसी का आलंबन की जरूरत, न किसी की अपेक्षा की जरूरत। और इतना पूर्ण सामर्थ्य से और सुख से भरा हुआ है कि अपनी सामर्थ्य के लिए किसी की जरूरत पड़े तो उसको सामर्थ्य नाम दे देना भी बेकार है, उसको सामर्थ्य कह ही नहीं सकते। ऐसा पदार्थ होने से यानी तो सहज निष्प्रहता बनी रहती है, कोई कृत्रिमता भी नहीं करनी पड़ती है। अंतरंग निष्प्रहता की बात कितने ये लोग निष्प्रभ हो या साधंधर नहीं करते, अंतरंग से वो निष्प्रभ होते हैं, उसी को ज्ञान कह रहे हैं। अच्छा सुंदर यह है तो कहते हैं यहाँ पर आधार अपने संबंध जो दो पदार्थ में है ही नहीं, इसलिए प्रत्येक वस्तु का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा रूप मैंने दृढ़ता पूर्वक रहने रूप ही आधार आधेय संबंध है। अपना वस्तु ही आधार है और अपनी वस्तु भी आधेय है। एक दूसरे का दो पदार्थ में आधार आधेय संबंध नहीं है। तो वस्तु कैसे टिकती है, इसके आधार से कि अपने सामर्थ्य से आधार, सामर्थ्य के आधार से टिकने वाला भी स्वयं और टिकाने वाला भी स्वयं। बस यहां से दीनता खत्म होती है, कोई दीनता से रहने वाली नहीं है। अब इस बात को पहले जो सिद्धांत गाथा में आया कि ज्ञान में क्रोधाधिक नहीं, क्रोधाधिक की मौजूदगी में ज्ञान में, ज्ञान की मौजूदगी में क्रोधाधिक नहीं। अब मूल बात पर आते हैं, अब सिद्धांत पर आते हैं। इसलिए ज्ञान जो कि जानन क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, आगे तो वस्तु की प्रतिष्ठा रख ली के अपने स्वरूप में अच्छी तरह प्रतिष्ठित मैंने दृढ़ता पूर्वक रहना, अविचल रूप से रहना, अपने स्वभाव से अपने स्वरूप से विचलित भी नहीं होना, ऐसा एक वस्तु का स्वरूप है। ठीक उसी दृष्टांत अनुसार ज्ञान जो कि ज्ञानम क्रिया रूप, यहां ज्ञान स्वभाव नहीं लिया या गुण नहीं लेना, इसके बाद पर्याय कह रहे हैं उपयोग शब्द लिया। कृष्ण भगवान ने तो उपयोग शब्द ही वो सूचित करता है, वो पर्याय ज्ञान का व्यापार, ज्ञान की क्रिया। उसके टीका करते हुए टीकाकार आचार्य नाराज थे कि इसलिए ज्ञान जो कि जानन क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, अविचल रूप है, जानने का कार्य हो रहा है सभी जीव को। एक सेकंड के लिए बंद कर दो, बंद करना चाहे तो भी बंद हो सकेगा। अब ज्ञान करना है नहीं करना है, सवाल ही पैदा नहीं होता। जो हो ही रहा है इस तरह हमारी हो रहा है कि जिसको बंद नहीं किया जा सकता, सर्वथा को बंद नहीं किया जा सकता, एक सेकंड के लिए बंद नहीं किया जा सकता। उसको करना क्या, जब यही वस्तु की वैज्ञानिक परिस्थिति है तो ज्ञान का कर्तृत्व पक्ष खत्म हो जाएगा, सिद्धांत का कर्तृत्व होता तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐकर्ता स्वभाव का अवलंबन होता है, अवलंबन पर्याय को मिलता है स्वभाव का, तो सहज ही वस्तु परिणाम की भी देखने में आती है, परिणाम करने का वहां भाव या कर्तृत्व का भाव आता ही भी, क्या वो वस्तु स्थिति नहीं है। अवगाह्य नहीं है कि हम करें तो स्वतः ही हुए जा रहा है परिणाम को। इसलिए ज्ञान जो कि ज्ञानन क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, इस ज्ञान के जानन क्रिया को विचलित करके जानने का अभाव हो जाए ऐसा बनने वाला नहीं है, इतनी दृढ़ता से ये प्रतिष्ठित है। यहां एक और विषय का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। कि हमें परिणाम अनुभव में आता है, हमें परिणाम दिखता है, परिणाम प्रकट होने से अनुभव गोचर है, इसलिए परिणाम को पर्याय को हम समझ सकते हैं। लेकिन स्वभाव को कैसे समझे या कैसे ग्रहण करें, ये हमारी समस्या आवश्यक है। तो यहाँ जो एक बात चली होती है, ये ज्ञान सतत हो रहा है, सतत चालू रहता है, तो कभी नहीं बंद होता है। ये जो ज्ञान का सातत्य है वो किसको बताता है, किसको प्रदर्शित करता है, किसको दिखाता है, ये मेरा प्रश्न। इसके सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है। जैसे हमारे यहाँ तेल के कुएं निकलते हैं, गैस के कुएं निकलते हैं, 2-3 हजार मीटर वो नीचे का बोर होता है, यहाँ से फिर वो जो डिपॉजिट पड़ी है वो निकलती है, तो सतत निकलता रहता है, बिना पंपिंग कोई पंप लगाए बिना वो निकलता है, सतत निकलता है। इससे क्या मालूम पड़ता है कि वहां गए बिना, इतने भीतर में गए बिना उसका डिपॉजिट कितना बड़ा है, तो भंडार कितना भरा है, उसका आंकड़ा वो प्रसिद्ध करते हैं। इतने करोड़ क्यूबिक घन मीटर, क्यूबिक मीटर मैंने घन मीटर ये चीज यहां पर कार्यकाल प्रारंभ हुआ, अगर बिजनेस बंद हो जाता, जिसमें चालू होता बिजनेस बंद हो जाता, लेकिन सतत निकलता है और जोर से निकलता है, तो उसको सामर्थ का भाग कितना बड़ा है। वैसे हमारा ज्ञान सतत निकलता है, उसके सातत्य का अगर अनुभव होता है, तो हमारे ज्ञान सामर्थ्य में ज्ञान प्रभाव का भी हमें पता चल जाता है। जिसका पता मिल गया वहां पहुंचना आसान है, जिसका पता नहीं मिले बगल में रहने वाले को भी ढूंढ सकते, मिल सकते, पहुंच सकते नहीं। अपने गले में रहते बाजू के मकान में हो, पता ही नहीं हो तो कहां सारे कलकत्ता में ढूंढेंगे, पता मिल गया कितना भी दूर हो कोई बात नहीं। यहां को पता भी मिलता है और उसकी समीपता, समीपता कहना अनुचित लगता है, तो संयम के रूप में पता लगता है। इसकी समीपता चाहते हैं कैसे कहें, तो स्वयं के रूप में इसका पता चलता है कि नहीं होंगे तो कहीं आना जाना है ही नहीं। मैं ही हूं, मैं मेरे स्वरूप हूं, परम आत्म स्वरूप होने से मैं ही परमात्मा हूं। योगिंद्र देव लिखते हैं, योगिंद्र आचार्य हुए परमात्म प्रकाश के रचयिता और सबक आचार्य, दिन मंदिर में देव जी के तन मंदिर में देखने में आता है। क्या तो जिन मंदिर में जिन देव है वो तो तन मंदिर में देखने में आता है, और जो जिन मंदिर में उसको खोजता है उस पर मुझे तो हंसी आती है। क्या कटाक्ष कर दिया है उन्होंने, आचार्य महाराज ने कैसा कटाक्ष किया कि लोग जिन मंदिर में देव को खोजने को जाता है तो मुझे हंसी आती है कि ये तो तेरे तन मंदिर में खड़ा है, उधर नहीं जाते तो उधर क्यों जाता है। ऐसा करके एक उलाहना दिया, क्यों कि कर्म को छोड़ करके स्वयं लक्ष्य से अपने स्वरूप को ग्रहण करो, ग्रहण करो उतना ही नहीं स्वयं से ग्रहण करो। कृपालु देव के वचनामृत में 17 साल पहले से कितनी छोटी उम्र में, 16 15 16 साल की उम्र में लिखे होंगे अंदाज, मैं जितनी उम्र लगाया था। तपन ये स्वरूप का स्वरूप का स्वरा से ग्रहण करो, स्वरा में शीघ्र शीघ्र माने अपनी ही कोई उठाने का व्यवहार उसमें नहीं है, वह संकेत हो रहा है गुरुदेव के बहुत प्रिय वचन है। इस ग्रंथ में पूरा ग्रंथ में बहुत से वचनामृत हैं, लेकिन गुरुदेव ने यही वचनामृत को पसंद किए और अपने आयु के अंतिम भाग में सारे ग्रंथ का अध्ययन करने के बाद उन्होंने जो परमात्मा में से आचार्यों के बड़े बड़े शब्द गाथाएं सिलेक्ट किए, पसंद किए, इसके साथ ये 10 वचनामृत को भी पसंद कर लिया है जो 17 साल के पहले पहले लिखा हुआ है। तो हमने इसका प्रकाशन किया है हमारे प्रवचन नवमी भाग के प्रवचन आए हैं, पढ़ने लायक है, उन्होंने कितना मूल्य दिया है प्रवचन करते हुए। ये 12 अंग का सार है, क्या है 12 अंग का है, इतने वचन में 12 अंग का सार उसी उम्र में भर लेना ये इसकी महिमा को प्रदर्शित करते हैं। कितने कोई व्यक्ति राज का विषय नहीं समझना चाहिए, क्यों कि जो गुणधारी होते हैं उनकी महिमा करना ये व्यक्ति राज नहीं है, ये गुणानु राज है। व्यक्ति राज जब कहा जाता है कि जो गुण नहीं हो उसका प्रशंसा करे महिमा करे उसको व्यक्ति राज बोला जाता है, लेकिन गुणधारण जिसने किया हो जो गुण प्रगट किया हो उसकी महिमा करना प्रशंसा करना स्तुति करना ये व्यक्ति राज नहीं है, लेकिन ये गुणानुराग है। नाम एक व्यक्ति का होता है, अनादि अनंत ज्ञानियों का अभिप्राय इसमें समाविष्ट है। एक ज्ञानी की प्रशंसा में अनंत ज्ञानियों की महिमा है, पर एक ज्ञानी की अवमानना है अनंत ज्ञानियों की अवमानना है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के नाम से गुणानुवाद किया जाए तो वहां कोई आपत्ति विवाद लाना नहीं चाहिए। इसमें इसमें कई पहलों से स्पष्टीकरण किए मैं देता हूं, कई प्रकार के ऐसे प्रश्न हमारे सामने आते हैं। यहाँ ज्ञानन क्रिया अपने स्वरूप में ज्ञान ज्ञानन क्रिया के रूप में अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है। अब ज्ञान क्रिया का दो रूप है, इसकी चर्चा कर महाराज ने नहीं की क्योंकि वो तो एक पर्टिकुलर मुद्दे पर खास मुद्दे पर जाना चाहते हैं, लेकिन जो स्पष्टीकरण में थोड़े इसलिए है कि ज्ञान में क्या लेना है। हमारा परिचय वो है कि जो भिन्न भिन्न पदार्थ को जानता है उसको हम ज्ञान कहते हैं, उतना ही हमारा परिचय। मैंने ये ज्ञान का एक अधूरा परिचय पूरा परिचय ज्ञान का दो रूप है। उसी पर सामने ये बात कही सर्वार्थ सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि ये तत्वार्थ प्रकृति का है। तत्वार्थ सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है लोकशास्त्र जो आजकल श्वेतांबर भीमवर दोनों आत्मा स्वीकृत है मान्य है, दोनों संप्रदाय के शास्त्र को अपना आत्म मान है। एक साहित्य सूत्र है कहीं दिगंबराचार्यों ने टीका की है, उसमें सर्वार्थ सिद्धि है
होता है, दूसरा कहता है कि पर्यायता और मलिनता होती है।
इसका ये वैज्ञानिक सॉल्यूशन है क्या? इस समस्या का जो समाधान है वो वैज्ञानिक तौर पर है कि दुख का मूल उत्पन्न होने का कहा है, फिर बोलता है मूल कहां से बन, अगर रूट को खत्म किया आगे की सब बात खत्म, कोई तकलीफ नहीं है। तो उसको मूल को मूल कारण को देखें और जो सही बात है सही उपाय है उसका इलाज करें, ये हो सकता है। तो यहाँ जो है इसलिए इसका स्पष्टीकरण आवश्यक है कि ज्ञान मैंने ज्ञान समान, ज्ञान मैंने ज्ञानाकार ज्ञान, और जैसे विभाव में मलिनता और दुख साथ होता है वैसे ज्ञाकार ज्ञान स्वभाव, ज्ञानाकार ज्ञान स्वभाव रूप होने से उसमें सुख और पवित्रता मौजूद रहती है। सुख भी है वहां, ये सुख का रूप और है कि मूल यहां से सुख यहां से उत्पन्न होता है। सुख कोई चीज मिलने से नहीं है, दुख कोई चीज नहीं मिलने से नहीं है, इसकी अप्राप्ति में दुख नहीं प्राप्ति में सुख नहीं, अनिष्ट की प्राप्ति में दुख नहीं अप्राप्ति में सुख नहीं, लेकिन यहां से सुख दुख की उत्पत्ति है। ये बिल्कुल वैज्ञानिक है,
ज्ञान समान विकल है।
पर्याय में पर्याय को देखेंगे तो ज्ञान सामान्य दिखेगा, क्योंकि पर्याय तो खुद विशेष फैक्टर है, इसलिए पर्याय में होने पर भी उसके पर्याय के रूप में नहीं देख करके उसको दृढ़पणे देखना चाहिए। ये बात प्रश्न उठा करके लक्ष्य लक्षण की चर्चा में दी, एक बहुत सूक्ष्म विषय ना खुलता है ये चर्चा में बहुत सूक्ष्म विषय खुलता है। सामान्य तौर से हमारी समझ यह है, जो मोटी मोटी समझ है स्थूल समझ है वो है कि पर्याय अनित्य है और स्वभाव नित्य है, इसलिए पर्याय व्यवहार का विषय है और नित्य स्वभाव निश्चय का विषय है। तो फिर 142 गाथा के पीछे जो 20 कलश आया उसमें इसका निषेध क्यों किया? अनित्य का निषेध किया तो नित्य में नित्य क्या, नित्य का निषेध क्यों किया? बात खुली है पंचाध्यायी का खुली है, तो पंचाध्यायी करके जब उतरिया है उसका एक बहुत बड़ा परिणाम है कि मूल जो स्वरूप है जीव का न केवल नित्य भी है न केवल अनित्य भी है, लेकिन उभय स्वरूप भी नहीं होते हुए अनुभय स्वरूप है। क्या वह स्वरूप भी नहीं होते हुए समझ लिया न केवल नित्य भी है न केवल नित्य अनित्य भी है। अगर वो केवल नित्य होता तो उपयोग लक्षण में स्वभाव अंश पाया नहीं जाता। पर यही उत्तर उन्होंने ये कर दिया है परिस्थिति थोड़ा विषय वैज्ञानिक है और सूक्ष्म भी है लेकिन बहुत लाभ का कारण है। अगर पल्ले पड़ गया तो बहुत लाभ का कारण है। प्रश्न है इसके पहले का प्रश्न है लास्ट बट वन, ऐसा कौन सा लक्ष्य है कि जो ज्ञान की प्रसिद्धि के द्वारा उससे भिन्न प्रसिद्ध होता है। लक्ष्य तो ग्रह है आप कहेंगे स्वरूप है, पर लक्षण है वो ज्ञान क्रिया है ज्ञान उपयोग है वो लक्षण है। तो ऐसा कौन सा है कि जो लक्षण से लक्ष्य भिन्न है, ऐसा किस प्रकार का क्या बात है उसमें? उत्तर देते हैं कि ज्ञान से भिन्न लक्ष्य नहीं है, ज्ञान लक्षण से लक्ष्य भिन्न नहीं है। लक्ष्य स्वभाव है और लक्षण ज्ञान का पर्याय है, ज्ञान का उपयोग है क्रिया है। क्योंकि इसका लॉजिक दे रहे हैं, क्योंकि ज्ञान और आत्मा में द्रव्यपने से अभेद है। क्या लिया? द्रव्यपने से अभेद है। ज्ञान की पर्याय में पर्यायत्व को लक्ष्य में से हटा करके तुम देखो, ज्ञान सामान्य में तुम्हें द्रव्यपना मालूम पड़ेगा, ऐसा कहते हैं। तो उनकी भाषा में समझाते हैं, स्वरूप स्वभाव सामान्य ऐसा है कि न उसमें कोई द्रव्य का भेद गुण का भेद और पर्याय का भेद कुछ भेद मालूम नहीं पड़ता, उसी को ही ज्ञान मात्र इधर कहना कहते हैं आचार्य महाराज। द्रव्य गुण पर्याय तीनों में होते हुए भी न द्रव्य रूप है न गुण रूप है न तीनों में एक भेद रूप नहीं है। तीनों में होते हुए ही तीनों से निर्भेद है, इसी का नाम द्रव्य स्वभाव है, इसी का नाम मूल स्वरूप है। यहां पे जो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ले आ जाए तो ज्ञान जो जानन क्रिया है, अब पढ़िए अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है। क्या लिखते हैं? ज्ञान जो ज्ञानन क्रिया रूप है वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, स्वरूप रूप प्रतिष्ठित है। अब नजर आता है आचार्य महाराज के कहने का क्या अभिप्राय है और कितने गहराई से वो लिख रहे हैं। ज्ञान जो ज्ञानन क्रिया है वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, तो स्वरूप रूप प्रतिष्ठित है। लेकिन हम वेद रूप देखेंगे, वेद बुद्धि में खड़े रहकर के पर्याय रूप देखेंगे, लक्षण का भेद देखेंगे, द्रव्य का भेद या गुण का भेद देखेंगे, हमें कुछ पल्ले पड़ने वाली बात नहीं है।
या जानन क्रिया को स्वभाव नहीं है, जानन क्रिया को स्वभाव ही प्रतिष्ठित नहीं है, ज्ञान को पर्याय भी है।
क्रिया जो है वो तो पर्याय,
ज्ञान वाली है पर्याय,
ज्ञान भी पर्याय है, ज्ञानन क्रिया भी पर्याय है, लेकिन अपना स्वरूप में है क्या? उसमें स्वभाव है, उसमें स्वभाव है। हम आपको वेद विज्ञान स्वभाव निर्भर कराता है। किसके द्वारा? तो मैंने क्या था, बिना पर्याय अंतर में उतरने का, ध्रुव स्वभाव को पहुंचने का कोई दूसरा इलाज नहीं है, सब उठा सकते हैं वो बात लिया। तो 125 में ऐसा प्रश्न उठाया है। तो पर्याय दिखती है, ध्रुव तो दिखता नहीं है, क्या करें, ऐसा प्रश्न उठाया। तो पर्याय दिखती है तो किस आधार पर खड़ी है? जो पर्याय दिखती है तो अच्छा खड़ी है, बिना द्रव को पर्याय खड़ी है या द्रव के साथ खड़ी है? लीला की चौक देखते हो उसमें आप ये कह सकते हो क्या कि हमको तो चमकी दिखती है, हीरा नहीं दिखता है, ऐसा कोई कह सकता है क्या? अगर कहता है तो वो कल्पना विहार करता है, वास्तविक ज्ञान नहीं है, पदार्थ का वो व्याप्त हो ही नहीं सकता। तो ऐसे एक प्रैक्टिकल नॉलेज में भी आते हैं, जैसे हीरा को चमक से हम देख लेते हैं, सिर्फ चमक से हम चमक को नहीं देखते हैं, पूरा हीरा को देख लेते हैं, ऐसे ज्ञान को ज्ञान स्वरूप की आत्मा स्वरूप के साथ देख लेना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं देखते हैं तो हमारी देखने की जो कार्य पद्धति है उसमें भूल है और ये गलत है। तो यहाँ से तो विधि में ले जाते हैं, क्या ले जाते हैं आचार्य महाराज, विधि में प्रवेश कराते हैं कि अपना अनुभव करने की कार्य पद्धति रीति क्या है। यहाँ से चलो, ज्ञान और राग जब भिन्न है तो ज्ञान में तुम देखो तुम्हें क्या दिख रहा है, ज्ञान में क्रियाकार दिखता है फिर वो कर दो दिखेगा, ज्ञान में एक रूप तो जरा विशेष इस पर और स्पष्टीकरण करेंगे, जो भी प्रश्न है कल उसको भी विचार करेंगे। हाँ, मुख्य निर्णय एक चीज है, क्योंकि विधि का विषय बारह में कोई सूक्ष्माति सूक्ष्म विषय है तो विधि का, जिसको इसका पता चल गया उसकी सब समस्या खत्म, उसका भी आप आ रही